Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Gopisha Navallava Girivara Dhari Gopisha Navallava Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashoda Nandana Yashoda Nandana Vraja Janarandana Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan.
His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. Sri Sri Yashoda Damodar ki. Sri Sri Radha Govinda Dev ki. Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki. Sri Sri Pancha Tattva ki. Giriraj Govardhan ki. Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज सुबह हमने चर्चा की थी गिरिराज गोवर्धन की जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में, और इस पर भी बल दिया गया था कि जो गोवर्धन है वो स्वयं कृष्ण है या कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण के महान भक्त हैं। तो जो वृंदावन धाम है जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में करते हैं और वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं वृंदावन सर्वकाल सुखावह, कि ये जो ब्रज भूमि है ये हर समय सुखावह है, ये भौतिक जगत क्या है दुखावह है। इसलिए हम गाते हैं दुख जालब्धि मग्नम नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हाँ, कहते हैं प्रसिद्ध प्रभु, हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए, क्योंकि मैं दुख जाल में क्या हो गया हूं, निमग्न हो गया हूं, डूब गया हूं। हाँ, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दनम बतानो। हाँ, तो इस प्रकार से वृंदावन की जो भूमि है वो सर्वकाल सुखावह, वहां कृष्ण सुख का अनुभव करते हैं और वहां के जो ब्रजवासी गण हैं वो भी दिव्य सुख की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे वृंदावन में कृष्ण, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि एक ही कार्य के लिए अवतरित होते हैं या प्रकट होते हैं, वो क्या है, इति दृक्सो लीलाभिर आनंद कुंडे हैं सोघोषम। सोघोषम मीन्स अपने जो प्रिय डिवोटीज हैं, ब्रजवासी जन हैं, वो सोघोषम है। सोघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, उनको आनंद के सागर में डुबो देते हैं। कृष्ण का एक मेव कार्य है। हाँ, जैसे एक बार माता यशोदा ने कहा बेटा कृष्णा आज हमें गौ पूजा करनी है, कृष्ण ने कहा मैं रेडी हूँ, किस चीज के लिए, गौओं को लाने के लिए। तो माता यशोदा ने कहा कि कृष्णा जाओ जाओ एक एक गाय को ले आओ, गाय नहीं तो बछड़े को ले आओ, वो तो छोटे हैं, गाय कहाँ उनसे संभाली जाएगी। वो छोटे से बछड़े को ले आते हैं और वो बछड़ा बैल था, जो भी बछड़ा था उसके ऊपर कृष्ण बैठ गए। बैठे नहीं पहले तो ले आ रहे थे अंदर खींच खींच के, बछड़ा इजीली नहीं आता। अभी जैसे अंदर घर के अंदर एंटर कर रहे थे तो वहाँ कृष्ण ने देखा कि वहाँ एंटर करते ही उस रूम में शीका जो होता है उसके ऊपर दूध दही मक्खन आदि टंगा हुआ है। तो कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, देखकर भोगा को देखकर अनकंट्रोल्ड हो गए कृष्णा, और वैसे ही उन्होंने जम मारी उस बैल के ऊपर या गाय के ऊपर बैठ गए और उन्होंने उसको पकड़ा कि अभी मक्खन निकालूंगा उसमें से। जैसे ऊपर उन्होंने उस शीके को पकड़ा तो वैसे वो बछड़ा नीचे से चला गया और ये देखकर माता यशोदा कंटिन्यूसली हंस रही थी। और आज उनको क्या करना था, आज के दिन गो पूजा करनी थी। तो वास्तव में कृष्ण का एक न्यू कार्य यही है, एक न्यू बिजनेस है। हाँ, भक्त का यही बिजनेस होना चाहिए कि कैसे मैं कृष्ण को आनंद प्रदान करूं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्त सुख दीते। ये जो एक एक शब्द है वो बहुत डीप है। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्णा केवल इस जगत में प्रकट होते हैं और अनंत लीलाओं का प्राकट्य करते हैं, उसका एक में उद्देश्य है भक्त सुख दीते, केवल 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 भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं। तो ऐसे कृष्ण उनको कोई गोवर्धन लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी उनको ब्रजवासियों को बचाना ही था, तो उनकी इच्छा शक्ति से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हजारों हजारों जो ब्रह्मांड है वो हवा में तैर रहे हैं, या इतने सारे जो लोक है, डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, तो उनको एक छोटा सा पहाड़, उसको उठाने में क्या थोड़ी उनको कुछ करना था। वो तो उन केवल कृष्ण डिजायर करें वो अपने आप हो सकता है, लेकिन कृष्ण केवल ये सारा भार उठाते हैं, इतना सारी हरकतें करते हैं, वो क्या है, केवल कैसे है मैं ब्रजवासियों को सर्वाधिक आनंद प्रदान करूं, ये कृष्ण की चेतना है। कृष्ण सदैव भक्त भावना भावना में मग्न रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण ये जो विशेष लीला है इसका प्राकट्य करते हैं। आज के दिन गोवर्धन ने उठाया था, कब उठाया था, कल के दिन कृष्ण ने। हमें लगता है कि अरे आज गोवर्धन पूजा है तो आज के दिन कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन को उठाया, नहीं, आज के दिन तो कृष्ण ने ये सिखाया कि इस इंद्र की पूजा को क्या आप करो, बंद करो, और गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू करो, और दूसरे दिन कृष्ण ये सारी दिव्य लीला को प्रकट करते हैं। तो कृष्ण अश्विन का महीना था जब सारे ब्रजवासीगण यज्ञ आदि करने के लिए मग्न थे, थोड़ा सा महावन, शायद कृष्ण उस समय नंदगांव में आए थे महावन आदि को छोड़कर, तो फिर वो चले गए अलग अलग स्थानों में ब्रजवासी यज्ञ वगैरह के लिए। तो कृष्ण अपने सखाओं के संग में गोचारण करने के लिए गए, और कृष्ण को और उनके सखाओं को बहुत भूख लगती है, तो भूख के लिए वो ब्राह्मणों के पास अपने मित्रों को भेजते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वो कुछ भी देते नहीं है भोजन। फिर कृष्ण कहते ठीक है, वो ब्राह्मण आज मुझे समझ नहीं रहे हैं, तुम क्या करो, उनकी जो पत्नियां हैं वो बड़ी पायस हैं, श्रद्धालु हैं, उनका मेरे प्रति प्रीति है, प्रेम है, आप जाओ उनके पास, मेरा नाम मात्र ले लो। कृष्ण और बलराम भूखे हैं, वो प्रसाद की या भोजन की याचना कर रहे हैं। तो ये सारे गोपास गोप सखा गए और उनको जैसे ही कहा उन ब्राह्मण पत्नियों को, उन ब्राह्मण पत्नियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कान ऐसे खिल गए, वो तैयार हो गई कृष्ण का नाम सुन के ही। और जो उन्होंने उस यज्ञ के लिए बहुत सारे नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे, बड़े बड़े सुवर्ण थाल उन्होंने लिए थाली, और उसमें भरने लगे, कितना डालो, किसको मिलने जा रहे हो, कृष्ण को, हाँ कितना ले जाओ, हम छोड़ना चाहते नहीं, रखना चाहते हैं, कम से कम बाहर निकालना चाहते, देना चाहते हैं, लेकिन इतना प्रेम है, प्रेम के कारण वो भूल गए कि ये ओवरलोड हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। सारे ब्राह्मण पत्नियों ने सारे स्वीट्स अलग अलग व्यंजन भर दिए थाल में, और हाथ में लेकर सर में लेकर कृष्ण को मिलने के लिए निकली हैं। और कृष्ण की आयु 7 साल की थी, कृष्ण वहां वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो गए तो कृष्ण ने स्वागत किया, उन्होंने कहा हो स्वागतम, भागवत में वर्णन आता है कृष्ण कैसे उनका स्वागत करते इस शब्दों के साथ। और फिर केवल वो जो यज्ञ पत्नियां हैं वो कृष्ण को देखना चाहती हैं, और ये कामना करती है कि हम तो यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आई हैं, हम तो हे कृष्ण सदैव आपके संग में आपके नजदीक निवास करना चाहती हैं। कृष्ण बहुत बड़ा प्रवचन देते हैं उनको, कृष्ण कहते हैं कि हे यज्ञ पत्नियों, आप सोच रही होंगी कि मेरा जो शारीरिक संग है या मेरे निकट निवास करने में ही प्रेम की बढ़ोतरी होती है, ये उचित नहीं है। कृष्ण ने कहा कि कोई ये सोचता है कि मेरे नजदीक होने मात्र से प्रेम मेरे प्रति बढ़ेगा, ये उचित नहीं है। कृष्ण ने कहा 4 चीजें करने से है यज्ञ पत्नियों, तुम सदैव मेरे संग मेरे निकट निवास करोगी और मुझसे बहुत अधिक प्रेम की जो भावना है तुम्हारे हृदय में डेवलप करोगी। तो कृष्ण ने कहा श्रवणा दर्शना ध्यानात मयि भावानुकीर्तनात न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान। उन्होंने कहा श्रवणा सबसे पहले श्रवण, दर्शना दूसरा, क्या बारंबार कृष्ण को देखो, इसलिए कृष्ण विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रवणा दर्शना ध्याना, अपने मन को अपने हृदय को कृष्ण के बारे में सोचने में लगाओ, यह अभ्यास है, ये मनन है। जितना हम अपने मन को अपने हृदय को कृष्ण से संबंधित कार्यकलापों में निमग्न कर देते हैं, उनका स्मरण करने में उतना ही अधिक हम कृष्ण के क्लोज हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं। अन्यथा हम कृष्ण के बहुत नजदीक हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के अलावा बाकी और चीजों को स्थान दिया है, इसलिए हम कृष्ण के नजदीक होकर भी कृष्ण के नजदीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्यानात मई भावानुकीर्तनात, भाव मीन्स लव प्रेम, अनुकीर्तनात कीर्तनात मीन्स मेरे ग्लोरीज को बोलते रहो, मेरे ग्लोरीज का गान करो, मेरे नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कहते हैं न तथा सन्निकर्षे न, हे यज्ञ पत्नियों इससे बढ़कर कोई नजदीकता नहीं है। प्रतियात ततो ग्रहान, प्रतियात आप चले जाइए वापस, आप अपने घर में जाइए। उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन कृष्ण उनको ये चार कार्य देते हैं कि ये कंटिन्यूअसली आप करती रहो, जो मेरे प्रति जो प्रेम है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कृष्ण उस दिन उस रात को उधर ही रहे, हाँ। और ये जो यज्ञ पत्नियां थी इन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन दूसरे गोपिकाओं से कृष्ण के बारे में सुना था, जिसके कारण केवल सुनते रहने से उनके प्रति बहुत प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे कृष्ण उस शाम को इन सबसे मिलकर फिर वापस जाते हैं, यहाँ आते हैं, नंदगांव आते हैं, और वहां आकर कृष्ण जब वापस आते हैं गोचारण करके, तो देखते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, हाँ बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, हर कोई निमग्न है, हाँ कुछ कुछ ना कुछ कर रहा है, मालाएं बनाई जा रही है, अलग अलग प्रिपरेशंस तैयार कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है पूरे नंदगांव आदि में, पूरे ब्रज में एक प्रकार से। तो कृष्ण 7 साल के थे और अभी वो बच्चे नहीं रहे, बालक नहीं थे एक प्रकार से, अभी कृष्ण बड़े हो गए थे और कृष्ण अभी जानना चाहते थे, हाँ क्योंकि कृष्ण को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने में समर्थ है। हाँ, अंतर बहिर अवस्थितम, कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती कि हे कृष्ण आप अंदर और बाहर का दोनों जानते हैं, ये तो नरसिम्हा क्या है, यतो यामी ततो क्या है, हाँ तो जहां जहां चाहे अंदर हो या बाहर हो वहां नरसिम्हा है कि नहीं, वैसे ही कृष्ण है। तो ऐसे कृष्ण देखते हैं कि नंद महाराज निमग्न है ये सारे चीजों को करने में, अलग अलग लोगों को आदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने नंद महाराज को पकड़ा। परिवर्तन लाना है तो किसको पकड़ो, जो मेन व्यक्ति है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, जैसे संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी गए, उन्होंने किसी और छोटे छोटे भक्तों लोगों को नहीं पकड़ा, सीधा सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे जगन्नाथपुरी का गुरु, राजा का गुरु जो मायावादी था उसको डिवोटी बना दिया। वो कहते मैं तो कौवा था, हे चैतन्य देव आपने मुझे गरुड़ बना दिया। तो ऐसे ही है, तो कृष्ण को परिवर्तन लाना था पूरी ट्रेडिशन में, तो उन्होंने क्या किया, किसको पकड़ा, नंद महाराज। नंद महाराज को कहा कथ्यताम मे पिता को यम संभ्रमो उपागत किम फलम कश्य उद्देश्य केन वा साध्यते मखा मखा मीन्स यज्ञ। उन्होंने कहा हे नंद महाराज, हे पिताश्री, कथ्यता में पिता को हम संभ्रमा व उपागत, इतना सब कुछ क्या चल रहा है, मैं कब से देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, हर साल देखता हूँ कि ये इनका ये यज्ञ हो रहा है, इंद्र की पूजा की तैयारी होती है शायद, की फलम इसका फल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है जो आप ये करने जा रहे हो, कश्य उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है, केन व साध्यते मखा क्या चाहते हैं आप, ये यज्ञ करने से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से जो कृष्ण है जानना चाहते थे कि कौन से देवता के लिए किया जा रहा है और ये शास्त्रों का आदेश है या नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने पिता से ये पूछते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि अभी मैं कोई ग्वाला नहीं रहा, अभी मैं क्या थोड़ा फिलोसॉफी जानना चाहता हूँ, अभी मैं इन डिटेल्स जानना चाहता हूँ, कब तक नया भक्त बन के रहो, मुझे भी तो आगे बढ़ना है, मुझे भी तो और भक्ति में उन्नति करना है, लेकिन हम अपने स्थान में संतुष्ट हैं। हाँ जैसे मेंढक होता है कुएं का, वो सोचता है इनफ, अभी मुझे एक कुआ मिल गया, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड, मुझे अभी बाहर नहीं देखना है। तो इस प्रकार इसकी स्थिति है। कृष्ण ने सोचा भी मैं कब तक छोटा बन के रहूं, मुझे आप बताइए कि क्या ये जो आप करते हैं ये वेदों से सम्मत है, वेदों के द्वारा इसको का वेदों के द्वारा बताया गया ये मार्ग है या नहीं है, या आप बस एक पॉपुलर ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, उसको फॉलो कर रहे हो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं बहुत ध्यान से इसको जानना चाहता हूं और मैं इस चीज को समझने के लिए बहुत अटेंटिव हूं। वो कहते कि देखो जो साधु होता है वो कभी अपने हृदय में छुपा के नहीं रखता है कोई बात, उसके लिए अपना या पराया या मित्र क्या है, समान है। इसलिए आप क्या करो, आप साधु के समान हैं, हे नंद महाराज। अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, छोटा सा बालक इतना सारा ज्ञान कहां से आ रहा है, कृष्ण इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो नंद महाराज सोचने लगे, मुझे लग रहा है ये अभी बहुत सीरियस बन रहा है, अभी ये सीरियसली जानना चाहता है, ये उठपटांग की बातें नहीं करता। जैसे कोई लोग होते हैं उठपटांग बोलते रहते हैं, हम समझते हैं हाँ सीरियस नहीं है। जब सीरियसली बात करना शुरू करते हैं भगवत भक्ति के, तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, आपको सीरियसली लेता है। वैसे ही है कृष्ण को अपने जीवन में सीरियसली लो, कृष्ण आपको कैसे लेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे, जैसे प्रभुपाद को लिया था। हाँ, भगवान का पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, हरिषे तद धनम क्षणे, कौन सीरियस होना चाहता है कि नहीं। भगवान पहला इंस्टॉलमेंट है सीरियस व्यक्ति के लिए, उसके सारे संबंध को तोड़ देते हैं, धन आदि को हरण कर लेते हैं। इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम डरते हैं, अरे इतना सीरियस हो जाऊंगा तो फिर तो वैसे ही नंद महाराज ने सोचा कि ये जो बालक है उठपटांग की बातें नहीं कर रहा है, ये तो जानना चाहता है सीरियसली। तो कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को कभी भी अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, सारी चीजें जानते हुए करनी चाहिए और उसमें सफलता होगी। अब प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करो, ये समाज रीति है या शास्त्र सम्मत है, कि पहले से करते आ रहे हैं बिना कुछ जाने बिने, तो क्या ये वैसे है या शास्त्र ये करने के लिए कहते हैं, ये आप मुझे बताइए। तो नंद महाराज ने कहा ये तो पॉपुलर ट्रेडिशन है, कुछ लोग उद्धृत करते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तशात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीननं जीवनं पय। कहते पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तशात्म मूर्तयः, ये जो भगवान इंद्र है ये पर्जन्य देता है, वृष्टि के देवता है, और ये क्या करते हैं, इनके प्रतिनिधि ये जो बादल है, मेघ है जो वर्षा करते हैं और जिसके द्वारा सारे जो जीव है वो जल को प्राप्त करते हैं, या प्रकार से जीवन को प्राप्त करते हैं। पानी क्या है, जीवन है कि नहीं। ऐसा कोई है कि हम पानी नहीं पिएंगे, निर्जला के दिन हम सोचते हैं, लेकिन कृष्ण से ज्यादा पानी के बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जीवन, इस हर जीव का जीवन जल है, जल ही जीवन है, ऐसे भी कहा जाता है। तो वैसे ही ये सब बातें बता रहे थे और उन्होंने कहा हे कृष्णा, ये चीज हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे लोग इस प्रकार के यज्ञ में लगे हुए हैं, क्योंकि जब इंद्र वर्षा करते हैं उसके द्वारा अन्न की प्राप्ति होती है और उस अन्न आदि के द्वारा हम सारा अपना उदर निर्वाह करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस यज्ञ इंद्र की प्रसन्नता करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे त्रिवर्ग की पूर्ति होती है, धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए ये नहीं होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। इस प्रकार से नंद महाराज कई चीजें कृष्ण को बताते जा रहे थे। तो कृष्ण ने फिर अभी टर्निंग पॉइंट, कृष्ण कुछ और बोलने लगे, उनको अभी पूर्ण रूपेण नंद महाराज को परास्त करना था। उन्होंने कहा कर्म न जायते जंतु कर्म नैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षमम कर्म हो कर्म नैवाभिपद्यते। तो कृष्ण कहते हैं कर्म न जायते जंतु, जंतु में जीव, कर्म से ही जीव जन्म लेता है, कर्म नैव प्रलीयते, कर्म के द्वारा ही उसका विनाश होता है, और सुखम दुखम भयम ये सारी चीजें अपने अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। तो कृष्ण कर्म के कर्म मीमांसा दर्शन जैसे मायावाद है वैसे ये कर्मवाद है, इसका वर्णन करने लगे कर्मवाद का और कहने लगे कि कर्म ही पूजा है। और इससे हाँ ये जो कर्मवाद है इसमें पुनर्जन्म तो विश्वास है लेकिन नास्तिक दर्शन है, जिसको कृष्ण जानबूझ के प्रेजेंट कर रहे थे नंद महाराज को। और वास्तव में नंद कृष्ण तो कोई और उद्देश्य नहीं था इनकी पूजा को रोकने के लिए, कृष्ण को केवल ये उद्देश्य था कि ये जो देवता हैं उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनसे अशाश्वत जो वर है वही प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण इस प्रकार का दर्शन प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा नंद महाराज उनसे सुनने लगते हैं और वो तत्पर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में जो प्रकृति है वही सबको दंडित करती है और कोई नियंता नहीं है। इस प्रकार से कृष्ण श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी चर्चा करने लगे, नंद महाराज को बताने लगे कि ये उचित नहीं है कि ये इंद्र हमारा जो भाग्य है वो बदल नहीं सकता, तो हमें क्या करना चाहिए, इस इंद्र का जो पूजन है वो हमें रोक देना चाहिए। वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि हमारा उदर निर्वाह वो कौन कर रहा है, हमारा जीवन किस पर आधारित है वो सोचना चाहिए। कृष्ण ने कहा जिस प्रकार से कई प्रकार की पत्नियां होती हैं, जैसे कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं, वैसे कृष्ण ने कहा एक पत्नी होती है जिसको जार पत्नी कहा जाता है। जार पत्नी का मतलब है कि पति जिसका पालन कर रहा है पत्नी का, लेकिन वो पत्नी अपने पति के अंडर है लेकिन वो क्या करती है किसी और से प्रीति रखती है, तो उसको जार पत्नी कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा उसी प्रकार से है, आपका उदर निर्वाह आपका पालन पोषण कोई और कर रहा है लेकिन आप किसकी सेवा में लगे हो, किसकी प्रसन्नता करने में लगे हो, इंद्र की। तो आप जार पत्नी के समान आप कार्य कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या आपको जानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो कृष्ण ने पूरे वर्णाश्रम धर्म को एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने कहा वर्तित ब्रह्मना विप्रा राजन्य रक्षया भुवा वैश्यस्तु वार्तया जीवेत। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण है वो स्टडी आदि करता है, छह प्रकार के कार्य करता है, जो क्षत्रिय है वो रक्षा आदि करता है, जो वैश्य है वो बिजनेस वगैरह करता है, गोरक्षा वाणिज्य ये सब करता है, और जो शूद्र है वो इन सब की सेवा करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हम तो वैश्य हैं और वैश्य चार प्रकार के कार्य में निमग्न रहता है, कृषि है, वाणिज्य है, गोरक्षा है और कुसीदम। कुसीदम का मतलब है लेन देन का व्यापार। कृष्ण कहते हैं कि हम प्रमुख रूप से इन चारों में से गो रक्षा का कार्य करते हैं, गवों को संभालते हैं, ये हमारा प्रमुख कार्य है। तो इसलिए यदि हम वैश्य हैं तो हमारे देवता कौन है, गाय है, हमारे देवता ब्राह्मण है और हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं नंद महाराज को कि हम पूर्ण रूपेण गाय गवों पर निर्भर हैं और गवों की रक्षा असली रक्षा कौन कर रहे हैं, पृथ्वी या जो माउंटेन्स हैं, क्योंकि पृथ्वी से ही घास की उत्पत्ति होती है, जो ये गव्य आदि खाती हैं और जिनके द्वारा हम अपना उदर निर्वाह करते हैं, हमें उनसे सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारे एक में रक्षक है ये माउंटेन गिरिराज गोवर्धन है। तो उन्होंने कहा महेंद्रम किम करिष्यति, ये जो महेंद्र है ये इंद्र क्या करता है हमारे लिए, ये तो सब जगह वर्षा करता है जहां आवश्यक नहीं है, समंदर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर या फिर पत्थर आदि के ऊपर, उस पर भी वो वर्षा करते हैं। तो ऐसे इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा है पिताश्री हमारे जीवन में ब्रजवासियों के लिए कोई आश्रय है तो वो केवल दो आश्रय हैं। उन्होंने कहा एक कौन है, गाय है और दूसरे ब्राह्मण है। अबे आप लोग इतने सालों से इन देवताओं की पूजा करते आए हैं लेकिन कभी भी ये देवता हमारे सामने प्रकट नहीं हुए हैं, कभी भी इन देवताओं को हमने देखा नहीं है, ये इंद्र कभी आया था क्या, इतने सालों से पूजा की लेकिन कभी आया नहीं पूजा लेने के लिए, ये सब ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यज्ञ करना ही है तो किसके लिए करो, तस्माद गवाम ब्रह्मनानाम आद्रे चार भेताम मखा। आप क्या करो, ये जो यज्ञ करना है तो ये गवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और जो ये गोवर्धन है, हिल है या माउंटेन है, उनके लिए करो। और ये जो इंद्र है इसकी ये जो यज्ञ है इसको पूर्ण रूपेण बंद करो। इस प्रकार से कृष्ण तीन चीजों की पूजा के लिए कहते हैं, एक गवों का, एक ब्राह्मणों का और एक गोवर्धन का। तो इस प्रकार से कृष्ण को ये जो गायें हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत अधिक प्रिय हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपने पिता के सारे आर्ग्यूमेंट्स हरा दिए। भागवतम में हर श्लोकों में विस्तृत वर्णन किया है कि नंद महाराज क्या बोल रहे हैं, इसके लिए कृष्ण कैसे उनको हरा रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण ने फाइनली उनको कन्विंस किया और उन्होंने उनको कहा कि जो भी चीजें अपने इंद्र के यज्ञ के लिए तैयार की हैं, इंद्र की पूजा के लिए तैयार की हैं, वही चीजें आप इनको तीन भागों में बांटो। एक भाग क्या है, यज्ञ आहुति करने के लिए, और दूसरा है ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए, और तीसरा है गिरिराज की पूजा के लिए, अन्नकूट फेस्टिवल मनाने के लिए। पच्यताम विविधा पाका सुपांता पाय साधया। तो इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपने इंद्र पूजा के लिए सामग्री एकत्रित की है उसी के द्वारा आप गोवर्धन की पूजा करो। तो गोवर्धन जो पूजा है उसको अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। और कृष्ण ने कहा कि इस गोवर्धन की पूजा करो, सारा ये जो सारे जो व्यंजन है इस गिरिराज को अर्पित करो, क्योंकि ये असली हमारे देवता हैं, ये असली हमारे रक्षक हैं, ये असली हमारे स्वामी हैं। और कृष्ण ने कहा कि इवन ये जो अर्पित हुआ गिरिराज के जो प्रसाद है, इस चंडाल आदि को बांटो, सबको अन्न बांटो, लेकिन इंद्र को मत बांटो, इंद्र को मत देना। अभी ये धोनी ये किसने सुना, इंद्र ने सुना, उसका सर गर्म होने लगा, टेंशन में आ गया इंद्र, मतलब कृष्ण इतने कठोर हो गए थे इंद्र के प्रति। और वास्तव में क्योंकि जो इंद्र है बहुत अहंकार उसका बढ़ रहा था, पफ्ड अप हो रहा था, तो कृष्ण उसको दंडित करने के लिए, ये तो बाहरी कारण कह रहे इंद्र का गर्व विनाश करना है, लेकिन कृष्ण क्या चाहते थे, कृष्ण चाहते थे एक ही समय में एक ही साथ सारे ब्रजवासियों को एकत्रित करके उनके साथ रस आस्वादन करना चाहते थे। कृष्ण अपने भक्तों के संग में सारे भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते थे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही शेल्टर के नीचे, ये कृष्ण का प्लान था, आंतरिक प्लान था। हाँ, लेकिन उन्होंने किसको यूज किया, इंद्र को यूज किया, और इंद्र उसी समय वो अहंकार उनका बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से कृष्ण ये सब चीजें कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप क्या करो, ये गिरिराज की पूजा करो। स्वालंकृता भुक्तवंतः स्वानुलिप्ता सुवाससा प्रदीक्षिणांच कुरुता गो विप्र अनल पर्वतान। आप सब नए नए वस्त्र धारण करो, अपने आप को अलंकृत करो, सजो धजो, और गिरिराज का जो उत्सव है उसमें भाग लो। और इतना ही नहीं बल्कि जब आप गिरिराज की पूजा आदि करोगे तो उसके बाद चार चीजों की परिक्रमा करो। कृष्ण ने कहा एक तो है गौओं की परिक्रमा करो, विप्र ब्राह्मण की परिक्रमा करो, अनल फायर की परिक्रमा करो, और चौथा क्या है पर्वतान गिरिराज की परिक्रमा करो। और भगवान ने कहा कि आप चल नहीं सकते तो बैलगाड़ी में बैठो, लेकिन क्या करो परिक्रमा करो। इस प्रकार से कृष्ण इंकरेज कर रहे थे। तो परिक्रमा एक रिस्पेक्ट का वो है, चिन्ह है। जैसे अद्वैत आचार्य ने सची माता जब गर्भवती थी, चैतन्य महाप्रभु उनके गर्भ में थे तो परिक्रमाएं की थी। हाँ, तो एक बड़ा रिस्पेक्ट प्रदान करना, तो गिरिराज की परिक्रमा करना मीन्स गिरिराज की कृपा को अपने जीवन में धारण करना। तो फिर कृष्ण कहने लगे, जो भी व्यक्ति गिरिराज को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करेगा वो उसका जन्म निश्चित रूप से ब्रज में होगा। कहाँ होगा? ब्रज में होगा, वृंदावन धाम की। इस प्रकार से कृष्ण सबको इंकरेज करने लगे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गिरिराज को अर्पित इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भर उठेगा, कृष्ण की महिमा को गान करने का सामर्थ्य उसके हृदय में आएगा और पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे कृष्ण कहने लगे कि इस गोवर्धन उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ अपने शरीर मन वाणी आदि को एंगेज करते हुए मनाना चाहिए, जिससे ये जो उत्सव सबके जीवन में सुख लाता है। और कोई व्यक्ति गोवर्धन उत्सव नहीं मनाता, इस उत्सव में थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखता है, कृष्ण कहते हैं वो निश्चित रूप से अंधा हो जाएगा, इस जगत में सड़ता रहेगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार से कृष्ण बहुत कुछ बोलने लगे। वो जानते थे कि गिरिराज गोवर्धन मुझसे अभिन्न है और मेरे महान भक्त हैं। इस प्रकार से कृष्ण उन सबको एनकरेज कर रहे थे। और तो ये ब्रजवासी बहुत महान है वास्तव में। शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी कहते हैं, इन ब्रजवासियों के बारे में सोच सोच के ब्रह्मा जी कितने सर से सोच रहे हैं, चार हमारे एक दिमाग से सोचते हुए हम इतना परेशान रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान पूर्वक कृष्ण की उस लीला को देखा, पूतना वध को, और वो आश्चर्य व्यक्त करने लगे, अरे इस पूतना जो जहर पिलाने आए थे उसको भगवान कृष्ण ने मारा भी, जो उनको जहर देने आई है उसको उन्होंने गोलोक वृंदावन में मां का स्थान प्रदान किया है। तो ऐसे कृष्ण वो ब्रह्मा सोचने लगे कि जो जहर पिला रहे हैं उसको कृष्ण गोलोक वृंदावन दे रहे हैं, और जो ब्रजवासी जिन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया है, जिनका जीवन जिनका सांस लेना जीवित रहना किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के पास क्या है ऐसे लोगों को देने के लिए? कृष्ण के पास कुछ बच सकता है? नहीं, कृष्ण अपने आप को दे देते हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं अहो आश्चर्यम अहो आश्चर्यम, वो कहते कितना आश्चर्य है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोपसाम, कि ये नंद महाराज, ये गोपियां और ये जो ग्वाल बाल आदि है इनके भाग्य की कोई तुलना कर सकता है? यत मित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनं, जो पूर्ण ब्रह्म आनंद के आगार है कृष्ण, उनके मित्र हैं या उनके पुत्र आदि हैं, उनके सखा हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण सबको उत्साहित करते हैं। हाँ, तो अमावस्या तो दीपावली का दिन थे और आज क्या है? प्रतिपदा है, प्रतिपद पहला दिन है। तो आज कृष्ण ने इन सबसे गोवर्धन पूजा करवाई और इतना बड़ा फेस्टिवल था कि सारे गोपिकाओं ने बड़े बड़े पहाड़ बनाए थे, हलवा राइस, कलरफुल राइस थे और स्वीट्स थे, गुलाब जामुन थे, रसगुल्लास थे, जलेबी थी और क्या था, बहुत सारी चीजें थी। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। वो लिखते हैं कि ये गोपिकाएं इतनी उत्साहित हो गई थी कृष्ण के इन बातों को सुनकर, नंद महाराज और सारे गोप सखा, इन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, जैसे दाल का एक सरोवर ही बना दिया, स्वीट राइस का सरोवर, ऐसे अलग अलग चीजों का सरोवर बना दिया। किसकी पूजा के लिए? गिरिराज की पूजा करने के लिए। कई प्रकार के वेजिटेबल्स, सारी चीजें, दूध दही मक्खन केक्स बनाए जा रहे थे और साथ ही साथ एक टीम था जो जोर जोर से नगाड़े बजाते जा रहा था, ड्रम्स बजा रहा था, कीर्तन कर रहा था। अभी ये कीर्तन की जो ध्वनि है ये त्रिभुवन से भी कहां जा रही थी? गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन नहीं, स्वर्ग तक पहुंच रहे थे। और स्वर्ग में ये सारी चीजों का जब आवाज सुनाई दे रहा था तो इनका जो सर दर्द है इंद्र का वो तेजी से बढ़ रहा था। पहले तो पूजा नहीं हुई, दूसरा जोर जोर से ड्रम्स बजा रहे, सर दर्द और बढ़ा रहे हैं। अब देखो ये कि अभी इतने सालों से पूजा कर ले, लेकिन एक बार नहीं की, सारे जगत के लोग पूजा कर रहे हैं, एक छोटा सा गांव, कितने थोड़े से लोग हैं, उन्होंने एक साल नहीं की तो जाने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तो लेकिन नहीं, हमारा प्रॉब्लम वैसे ही है, हम सारे अपने घर में छोटे छोटे इंद्र हैं अपने स्थान में, बाकी बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए अहंकार को ठेंच पहुंचती है। हाँ, तो फिर कृष्ण हमारा ऑपरेशन करते हैं। हाँ, तो इनका कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था इंद्र का, पूर्ण रूपेण वह शरणागत हुए। तो ऐसे इंद्र ने जब सुना तो उनके कानों में दर्द होने लगा, पेन होने लगा, तो इंद्र अपने डॉक्टर्स को बुलाते हैं। स्वर्ग में डॉक्टर कौन है? अश्विनी कुमार है। हाँ, अश्विनी कुमार दो भाई हैं, दोनों का नाम अश्विनी कुमार है। तो डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने कहा आपका सर दर्द उसी के कारण हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी आवाज बंद करने के लिए, फिर भी वो आवाज, क्योंकि जो आवाज हृदय में पहुंच गई है उसको आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? नहीं, कान बंद कर दो, आंख बंद कर दो, लेकिन हृदय में एक बार कोई चीज पहुंच जाए बहुत डिफिकल्ट है उसको बाहर निकालना। तो ऐसे जो इंद्र थे वो बहुत परेशान थे। हाँ, और फिर कृष्ण ने ये जो अन्नकूट सेरेमनी है वो मनाया, और सारे जो व्यंजन है गिरिराज गोवर्धन के सामने रखा। अब इस्कॉन गोवर्धन टेम्पल के सामने जाते हैं तो वहाँ से लेकर अन्योर जो विलेज है, अन्योर गांव है, वहाँ तक उसको अन्नकूट क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ तक सारे कई किलोमीटर्स में, उस समय तो गिरिराज बहुत लंबा था, कई किलोमीटर्स में ये सारे व्यंजन रखे गए थे सारे ब्रजवासियों के द्वारा। और फिर कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हो जाते, बड़ा रूप धारण करते हैं, विशाल। हाँ, और कृष्ण कहते देखो देखो इंद्र कभी आया था क्या ऐसे? हाँ, यहाँ हमने भोजन क्या रखा अर्पित करने के लिए, ये गोवर्धन अभी तुरंत प्रकट हो गया। इतने सालों से आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे हो, एक बार भी वो आंख खोल के उसने देखी नहीं, ना यहाँ आया है। तो फिर नंद महाराज आदि सब लोग कृष्ण को देखने लगे, और वहां कृष्ण ने अपना बड़ा रूप प्रकट किया गोवर्धन के रूप में, अपना फेस, और कहा कि मैं गोवर्धन हूं। मैं कौन हूं? गोवर्धन हूं। तो सारे लोग सोचने लगे, और उन्होंने जो भी इन लोगों ने बड़े बड़े सरोवर बना के रखे थे, चावल के माउंटेन्स थे, हलवे के माउंटेन्स थे, हाँ, तो इन सबको उन्होंने अपने बड़े बड़े लंबे हाथ आगे करके ग्रहण करना शुरू किया। इतने बड़े थे गोवर्धन पर्वत कि बादलों को टच हो रहा था और प्रकाशमान था। हाँ, तो इस प्रकार से जब कृष्ण गिरिराज के रूप में प्रकट हुए तो फिर कृष्ण कहने लगे, कृष्ण ने कहा कि ये छोटा सा बालक था ना, इन्होंने कहा कि आप कौन हो? अभी सबको पता चलना चाहिए ना कौन हो। तो वहां उन्होंने क्लाउड में से आवाज आती है, वो कहते हैं, हाँ, वो गिरिराज कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं गोवर्धन हूँ, गोवर्धन हिल हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, हंसकर ये दोनों प्रणाम करते हैं। इनको देखकर सारे ब्रजवासी गोवर्धन को प्रणाम करने लगे, उनकी स्तुतियां करने लगे। हाँ, तो जब गिरिराज अपने फुल फॉर्म में आ गए प्रसाद भोजन लेने के, तो उन्होंने अपने लंबे लंबे हाथ फैलाए, और सारे ब्रजवासी, आचार्य दिन कहते हैं कि जब गिरिराज ने अपने हाथों को फैलाया, जैसे हाथ उस दाल के सरोवर की ओर जा रहा था, तो सारे ब्रजवासी वहां भागते थे देखने के अभी क्या हो रहा है, वहां खड़े हो जाते थे, खड़े होकर तुरंत देखते थे अरे दाल तो पूरा पी लिए, फिर वहां भागते थे, स्वीट राइस का सरोवर था, ब्रजवासी दौड़ते थे और कहते कि ऐसे हो जाते कि जैसे ब्रजवासी चित्र बन गए हैं, जैसे देखते थे कि ये गिरिराज इन सबको ग्रहण करते जा रहे बहुत फास्ट, तो ब्रजवासी ब्रजवासियों की आंखें बड़ी हो जाते थे और स्तब्ध हो जाते थे एक स्थान में। तो इस प्रकार से कृष्ण जो गोवर्धन के रूप में थे, आज के दिन इन सारे चीजों को खाते जा रहे हैं। हाँ, और सब आनंदित हो रहे थे ब्रजवासीगण, और गिरिराज तो आनंदित हो ही रहे थे। तो फिर कहते कि जब उन्होंने ग्रहण किया तो देखा कि खत्म हो गया कुछ ही क्षणों में, ब्रजवासी चिंतित थे। और फिर कृष्ण कहते हैं, जो गिरिराज हैं वो कहते हैं अन्य और चाहिए। अभी कहां से लाए? और तो फिर एक ब्रजवासी भक्त बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा अभी बताता हूँ आपको। हो गए तुलसी लाई, एक छोटा सा तुलसी पत्ता लाया और रख दिया उनके सामने, एक छोटे से स्वीट के ऊपर या किसी भोगा के ऊपर। और जैसे उन्होंने उसको ग्रहण किया, अभी क्या हो गया हूँ, तृप्त हो गया हूँ। हाँ, तो फिर भगवान कृष्ण ने इन सब ब्रजवासियों को कहा कि हम सबको परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन भक्तों ने, ब्रजवासियों ने ब्राह्मणों की परिक्रमा की, गाय की परिक्रमा की, और फिर एक साथ निकले गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आज दोपहर के बाद। हाँ, परिक्रमा करते करते हैं ये सब लोग सिक्वेंस से जा रहे थे। सबसे पहले गाय जा रही थी जो सफेद कलर की थी, सफेद वर्ण की थी, और फिर बाकी सारी गायें, फिर ब्राह्मण उनके पीछे मंत्रों का उच्चारण करते हुए कृष्ण के गुणों का गान करते हुए जा रहे थे, और फिर बाकी जिन उनके ब्रजवासी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो सारे उनके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर शास्त्र कहते हैं कि फिर उनके असिस्टेंट जा रहे थे, फिर उनकी पत्नियां जा रही थी, और फिर जो टीनेज गर्ल्स हैं वो जा रही थी, और फिर सारे आर्टिस्ट कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, नगाड़े बजाते हुए हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, और बारंबार गिरिराज के सौंदर्य को देखते जा रहे थे। हम अपने आप को देखते हुए जाते सोचते रहते कितना रह गया, कितना घंटा बाकी है, कितने किलोमीटर, वो गिरिराज साइड में है, याद ही नहीं आता कि साइड में गिरिराज भी है। इस प्रकार से ये सारे भक्तगण, ब्रजवासीगण गिरिराज की महिमा का गान करते हुए जा रहे थे, और एक गोपिया की विशेष गीत गा रहे थे। गोपिया कह रहे थे, गोपिया सदैव कृष्ण का स्मरण करते थे। गोपिया कहती हैं, गिरि पूजेयम् विहिता केन अर्च शक्र पद भयम् जेन, गिरि पूजेयम् विहिता केन पूत निकास निहिता जेन। कहते गिरिराज की पूजा किसने सिखाया हमें, जिन्होंने इसका गर्व नाश किया है। गिरि पूजेयम् विहिता केन पूत निकास निहिता जेन, गिरिराज की पूजा किसके द्वारा हम कर रहे हैं, जिन्होंने पूतना का वध किया था। गिरि पूजेयम् विहिता केन तृणाव्रतम तनु दलनम जेन, जिन्होंने तृणाव्रत का दलन किया था। गिरि पूजेयम् विहिता केन यमलार्जुन तरुमुदकलिजेन, जिन्होंने यमलार्जुन का उद्धार किया था। गिरि पूजेयम् विहिता केन वत्स बकासुर हननम जेन, जिन्होंने वत्सासुर बकासुर, ये हैं परिक्रमा के साथ साथ क्या होना चाहिए, कृष्ण की महिमा का स्मरण होना चाहिए। कृष्ण के कार्यकलापों को अपने हृदय और मन में चिंतन करते हुए हमें भ्रमण करना चाहिए। गिरि पूजेयम् विहिता केन व्योमगासुर मरणम जेन, जिन्होंने व्योमासुर अघासुर आदि को मारा है, ऐसे ये कृष्ण है जिन्होंने हमें गिरिराज का जो पूजन है वो करने में लगाया। तो सारे लोग गिरिराज की परिक्रमा की संध्या शाम तक सबने, और दूसरे दिन मतलब कल के दिन द्वितीया है, भ्रातृ द्वितीया कहते हैं ना उसको, भाई द्विज, सब भाई खुश हो जाते हैं, बहने और खुश हो जाती है नहीं? तो वैसे ही कृष्ण बहुत खुश थे और गए अपनी जो बहन है। अभी कृष्ण की बहन तो भगवान की योग माया प्रकट हुई थी, वो तो चली गई कंस के द्वारा, वो आकाश में निकल पड़ी। लेकिन कृष्ण के जो नंद महाराज के जो भाई थे उपनंद, उनकी पुत्री थी सुनंदा, दूसरे दिन कृष्ण उनको मिलने जाते हैं, उनका इनविटेशन था, स्पेशल इनविटेशन, सुनंदा के घर जाते हैं। तो वहां कृष्ण अपने जो सखा है मधुमंगल और एक दो और सखाओं को ले जाते हैं। तो उनको ले जाते हैं तो सुनंदा ने बहुत सारे कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे, और मधुमंगल तो हमेशा छल्ले बल्ले लड्डू खाए, श्री मधुमंगल, मधुमंगल को तो स्वीट के लिए मैड है लड्डू आदि, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। शास्त्र कहते अलग अलग व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो बस भोजन खिलाते रहो, प्रसन्न हो जाएगा। तो वैसे ही मधुमंगल गए और इन सबने प्रसाद वहां ग्रहण किया। कृष्ण को कहने लगे, आपकी ना और भी बहने होनी चाहिए थी, 365 कितने पूरे कितने दिन होते, 360 365 या 360। तो हम हर रोज आपके एक बहन के वहां जाया जाते हाँ, और फिर हर रोज हम कई प्रकार के व्यंजन स्वीट्स को हाँ खाते तुम। लेकिन फिर मधु मंगल कहते आपकी बहन ही नहीं है कोई, आपका तो लेन देन हुआ था, आपको तो मथुरा से यहाँ लाया गया और आपकी बहन को वहां ले जाया गया हाँ। इस प्रकार से ये सब हुआ और फिर बाद में हाँ, तब तक जो ये इंद्र है उसके हृदय में जो पीड़ा वो बढ़ती जा रही थी, अभी उसको एक एक क्षण युग के बराबर प्रतीत हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये ब्रजवासियों को दंड देना चाहिए हाँ। वो देवताओं की सभा में उसका जो मानसिक संताप है वो इतना तेजी से बढ़ रहा था, जल रहा था, कठोर बोली में क्रोध में वो आकर बोल रहा था, अहो आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है, ये छोटे से बालक की वाणी को सुनकर हाँ ये जो पशुओं का पालन करने वाले पशु के समान ये जो ब्रजवासी गण है इन लोगों ने क्या किए, मेरी उपासना छोड़ दिए हैं, अपासना की है हाँ। तो इस प्रकार से बड़े क्रोध में बोलते जा रहा था, केवल कहते हैं कि ये मदांधता है, ये लोग अहंकार के कारण अंधे हो गए हैं। वो कहते कि हे गोपो मैं दिखाता हूं आपको कैसे आपका भला होगा हाँ। इस प्रकार से बहुत कुछ इंद्र बोलने लगे और बोलते बोलते इंद्र ने कहा कि ये जो कृष्ण है छोटा सा बालक ये चंचल बुद्धि वाला है, मैं देखूंगा कि आप लोग उसका बहुत सुन रहे हैं आजकल, मुझे ठुकरा रहे हो हाँ, वो कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकता है, कैसा आपका हित कर सकता है वो मैं दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्रोध के वश में आकर इंद्र ने हाँ, जो प्रलय के समय इस्तेमाल होने वाले जो संवर्तक बादल है उनको इन्वाइट किया, संवर्तक बादलों को, और उनकी प्रशंसा की उन मेघों की, और उन्होंने कहा कि आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप वेगवान हो, और आप क्या करो वृंदावन में जाकर ब्रज में जाकर हाँ उसको विनाश करो, ब्रज का विनाश कर दो। तो 15 मिनट में हाँ ये 15 ने हाँ 45 मिनट में सारे ये जो समर्थक बादल आदि आते हैं और पूरे वृंदावन को हाँ पूरे वृंदावन को काला छन्न कर देते हैं, अंधकार छा जाता है, तूफान हवाएं बहने लगती है, धूल उड़ने लगती है चारों ओर, और सब जगह कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, और अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। भागवतम कहता है कि ऐसे वर्षा के बिंदु आ रहे थे जिस प्रकार से वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष की दाढ़ी होती है ना, उसकी जटाएं लटकती रहती है ना एक साथ हाँ, जैसे बारिश के बिंदु एक एक गिरता है, लेकिन यहाँ बारिश जैसे नल को ऑन करते हो बहुत तेजी से गिरते ना पानी, वैसे गिर रहा था कंटिन्यूअसली, और बड़े बड़े पिलर के समान हाँ वर्षा हो रही थी। तो सारे ब्रजवासी गण हाँ बहुत डरे हुए थे, और विशेष रूप से गाय हाँ हजारों गाय, उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको अपने बछड़ों की चिंता थी। जैसे गायों का जो गल कंबल होता है गले में होता है, गले से लटकता है जिसको गल कंबल कहते हैं, तो वो उसमें अपने बालकों को बछड़ों को वो छुपा रहे थे ताकि उनको कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से गाय अपनी पूछे अंदर करके हाँ बिल्कुल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, रक्षा की याचना करते जा रहे थे और कांपने लगे थे और सदैव कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। और बैलों के साथ भी वही था, क्योंकि इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी वर्षा हो रही थी तो उनके ऊपर जो ठिल्ला है ढिल्ला या ठिल्ला जो होता है ना बैल के ऊपर वो भी गिर रहा था, बहुत उनको कष्ट हो रहा था। तो सारे ब्रजवासी इस कष्टप्रद स्थिति में थे, इस जलधारा प्रलय की स्थिति वहां उत्पन्न हो रही थी। तो सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, क्रंदन करने लगे, कृष्ण को पुकारने लगे, हे महाभाव, हे कृष्ण, आप हमारे जीवन में उत्सव हैं, और आज क्या हुआ है हमारे उत्सव हमारे जीवन से जा रहा है, इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर आ रहा है, कृपा करके आप गोकुल और ब्रजवासियों की रक्षा कीजिए हाँ। जैसे ये जो बिजलियां हम देख रहे हैं, जैसे इनका जो चमकना है ये वैसे ही जैसे कि सांप की जो लप लपती जो जीव जीवा होती है वैसी ये बिजलियां हैं जिनसे हम डर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से ये जो ब्रजवासी हैं वो प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे कृष्णा आपको गव्य बहुत अधिक प्रिय है, देखो देखो इन गवों को, हाँ, जो असहाय होकर आपको पुकार रही है और तुम्हारे प्रतीक्षा में वो खड़ी है, आप आओ और उनकी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, जिस प्रकार से आपने हम सबकी रक्षा की थी दावानल, हाँ, जब अग्नि में हम जल रहे थे दावानल में, तो आपने पान किया था, अग्नि को पी लिया था, तो उसी प्रकार से हम हमारी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार से ब्रजवासी बहुत तीव्रता से कृष्ण को पुकार रहे थे, याचना, बहुत गहरी याचना की भावना ब्रजवासियों के अंदर थी, तो वहां तुरंत ही कृष्ण आते हैं और कृष्ण आकर क्या कहते हैं, तुरंत अपने आंखों को खोलते हैं, बड़े करते, जैसे कि कृष्ण की आंखें कमल नयन, उनकी आंखें खुलती हैं तो कान तक चली जाती हैं, ऐसे लगता है, हाँ, तो अपने आंखों को खोलते हुए कहते हैं, मधु से भी मधुर वाणी में कृष्ण कहते हैं, थोड़े भी कृष्ण विचलित नहीं थे, हाँ, इतना स्वीट मधुर वाणी में कृष्ण कहने लगे बाल मुकुंद, वो कहते कि हे ब्रजवासियों आप डरो मत, हाँ, क्योंकि भगवान ने गीता में, मैं आगे चलकर कहने वाला हूं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, हाँ, तो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में किसका नाम लिया था, ब्रज, कांपने लगे थे कृष्ण महाराज के ऊपर, अरे ये क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस ब्रज को मैंने छोड़ा है उसका अचानक वर्णन कर रहा हूं, तो कृष्ण सोचने लगे वास्तव में सर्व धर्मान परित्यज है, ये ब्रजवासियों के अलावा इसको ये श्लोक लागू नहीं होता, इसके एक में उदाहरण कोई है तो केवल ब्रजवासी जन है, जिन्होंने सारे धर्म आदि को त्याग दिया है और मेरी एकमात्र शरण ग्रहण की है। तो ऐसे कृष्ण जब देखते हैं ब्रजवासियों को, तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो इंद्र है इसने ये उपद्रव मचाया है और ये इतना बड़ा नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगती है और भूख से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा जितनी बड़ी है इतनी बड़ी नहीं होती पीड़ा, तो उतनी ही पीड़ा है जो किसने क्रिएट की है, इस इंद्र ने क्रिएट किया है, ये जो उपद्रव है, तो बल्कि कृष्ण इस उपद्रव को खत्म कर सकते थे अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, लेकिन कृष्ण दिखाना चाहते हैं, हाँ, क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो अपने भक्तों के लिए कितना है, और दूसरा क्या है कि कृष्ण ने कहा कि मैं नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, हाँ, और तीसरी चीज क्या कि मेरे भक्त का शेल्टर ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है, हाँ, बल्कि कृष्ण बलराम अभी इतने सारे ब्रह्मांडों को उठा के रखते हैं अनंत शेष के रूप में, वो बलराम को बोल देते बलराम तुम जरा उठा लो इसको, बोलते कि नहीं, हाँ, बलराम तो वैसे कर लेते अनंत शेष के रूप में, गोवर्धन को ऐसे उठा के कहा और ऊपर उठा लेते, हाँ, स्वर्ग को भी उठा लेते, हाँ, तो लेकिन बलराम को कृष्ण ने नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण ने बोला है ना, हाँ, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मैंने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा, कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं कैसे बलराम को बोलूं, तो इसलिए कृष्ण गिरिराज को धारण करते हैं और ये सब चीजें हमें सिखाने के लिए, तो शास्त्र कहते श्रीमद भागवतम कहता है कि जिस प्रकार से एक हाथी कमल का फूल अपने सुंड में उठा लेता है या फिर एक तृण या घास का गुच्छा उठा लेता है बिना किसी प्रयास के एक हाथी, उसी या छोटा सा जो बच्चा है छत्रक या कुकुरमत्ता जो होता है छोटा सा उसको ऐसे उखाड़ के उठा लेता है, वैसे ही कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज, हाँ, गोवर्धन को उठाया, हाँ, और आपने, हाँ, हाथ में, हाँ, उन्होंने धारण किया, तो भगवान गिरिराज को उठाते हैं और इतना ऊपर कृष्ण ने उठाया कि इतना ऊंचा लग रहा था कि मेघों को भी पार करके गोवर्धन बहुत बड़े हो गए थे, विशाल ऊंचे ऊंचे जा रहे थे, जैसे जैसे गिरिराज ऊपर ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो बाकी पर्वत है हिमालय है सुमेरु है ये सारे पर्वत देखने लगे, अरे कौन आ रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, हम इतने ऊपर है कौन है, एक्स्ट्रा कौन कौन जा रहा है, बड़े आश्चर्य के साथ वो लोग देख रहे थे, और ऐसे इतनी बड़ी अम्ब्रेला इतना बड़ा छाता किसके लिए उठाया था कृष्ण ने, ब्रजवासियों के लिए, केवल अपना जो प्रीति है ब्रजवासियों के प्रति, भक्तों के प्रति, उसका प्रदर्शन करने के लिए। और दूसरा क्या था, और वास्तव में गोवर्धन कृष्ण के महान भक्त हैं, कि मेरे भक्त का शेल्टर ग्रहण करना, उनका आश्रय ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्ण गिरिराज को धारण करते हैं, ये बाकी पर्वत कैलाश सुमेरु आदि देखते जा रहे थे, ये कौन जा रहा है ऊपर। इस प्रकार से जब ब्रजवासीगण, कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि हे मदर यशोदा, हे माता यशोदा, हे नंद महाराज, उनके मित्रों को बुलाने लगे, संदेह मत करो, डाउट मत करो कि ये मेरे हाथ से फिसल जाएगा, आप क्या करो, बिना शंका से आओ और इसके नीचे आश्रय ग्रहण करो। और कहते हैं कि ये जो आप संशय मत कीजिए, इसमें संशय मत कीजिए कि ये गिरेगा, क्योंकि जिसने इतने सारे ऑफरिंग्स को जो भी हमने ऑफर किया था उन सबको ग्रहण किया है, तो वही जो ये गोवर्धन है ये आकाश में अपने आप स्थित है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मैं उनको उठा नहीं रहा हूं, वो स्वयं ही क्या है, हमारे रक्षा के लिए आकाश में एक प्रकार से तैर रहे हैं, आकाश में स्थित हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते कि वो बहुत हल्के हो गए हैं ये जो गिरिराज है, तो आप सब लोग आ जाओ और इसका आश्रय ग्रहण करो, अपने गवों को लेके आओ, बछड़ों को लेके आओ। तो सारे ब्रजवासी गण, सारे बछड़ों को, गवों को, सारे ब्रजवासी जाते हैं और वहां निवास करने लगते हैं गिरिराज के नीचे। तो ऐसे कृष्ण सबको देखते हैं, गवों को, ब्राह्मणों को, ग्वाल बालों को, सारी स्त्रियों को, श्रीमती राधिका, गोपिकाएं हैं, नंद महाराज, यशोदा, उनके जो सखागण हैं, इन सबको देखते हैं। तो सबसे बाहर तो गवे बैठी थी, फिर ब्राह्मण बैठे थे उसके अंदर, फिर गोपाल थे, फिर जो वृद्ध गोपिकाएं हैं वो सब बैठी थी, फिर राधा रानी आदि सखिया बैठी, फिर कृष्ण के सखागण, फिर कृष्ण खड़े थे उनके आसपास, नंद महाराज, यशोदा, और फिर कृष्ण खड़े थे वहां। तो इस प्रकार से कृष्ण खड़े थे और सब लोग, सबका जो मुख है वो ऐसे नहीं कि बैठे अरे आपस में बातें कर रहे, नहीं, सबका जो मुख कहाँ लगा हुआ था, कृष्ण की ओर। जैसे चातक पक्षी है वो सदैव पहली जो वर्षा की धारा है उसके जल के लिए वो लालायित रहता है, अपनी चोंच को ऊपर करके चिल्लाता रहता है मर जाऊंगा। हाँ, चाहे वो जो बिजली है कई बार उससे मर जाता है चातक, लेकिन उसके लिए तत्पर रहता है, बस पानी पीऊंगा तो वहां का ऊपर से जो गिर रहा है उसके लिए। वैसे ही चातक के समान सदैव लालायित थे सारे ब्रजवासीगण, गव्य बछड़े आदि, जिनका मुख एकमात्र कृष्ण की ओर था और कृष्ण के सौंदर्य को ये सारे देखते जा रहे थे, और उनको ना भूख लग रही थी ना प्यास, पर वो कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत को पीते जा रहे थे। तो इस प्रकार से कृष्ण 7 साल के थे और 7 दिनों तक कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था और सारे लोग कृष्ण के सौंदर्य को पी रहे थे। तो मधुमंगल कहते हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण का मतलब है जिसमें ब्रह्म तेज होता है, जिसमें शक्ति होती है, नाम का ब्राह्मण नहीं, और तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम थोड़ा थक भी जाओ ना तो मैं अपना डंडा तैयार है, मैं थोड़ा उठा लूंगा उसको। तो इस प्रकार से मैं अपने केवल डंडे के अग्र भाग से ही गिरिराज को धारण कर लूंगा। तो मधुमंगल, और तुम थोड़ा क्षण भर विश्राम करो। तो मधुमंगल इस प्रकार से बोलते जा रहा था, तो माता यशोदा, माता का हृदय है, किसी और का हृदय इतना बड़ा नहीं होता जितना माता यशोदा का है। माता यशोदा देखने लगी, वो कहने लगी कि ये मधुमंगल सही कह रहा है, देखो हे कृष्ण, कब तक तुम उठा के रखोगे, इन सब गोपों के संग में तुमने बहुत सारे कार्य किए हैं। देखो मैं कह रही थी ना शुरुआत में, देवताओं से तिरस्कार करना अच्छा नहीं है, उनसे तिरस्कार करोगे तो उसके ये फल है, तो आप सुनते नहीं हो मेरी बात, हाँ सुख कैसे आएगा जीवन में, तो देखो तुम्हारा ये जो हाथ है बहुत परिश्रम कर रहा है। और माता यशोदा हाथ को छूती है और वो बोलती है, देखो हे कृष्णा, तुम्हारा ये जो भुजा मंडल है ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह है, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहे हूँ मक्खन की तरह ये जो भुजा मंडल है या हाथ है इतने बड़े पहाड़ को कैसे उठा के रख पा रहा है, क्या इसमें आश्चर्य है, क्या क्या इसमें विशेषता क्या है, इतना कोमल है, इतना शीतल है। इस प्रकार से माता यशोदा देख रही थी कि मेरे छोटे से बालक ने इतना बड़ा गिरिराज उठा के रखा है। और तो उस समय तो वो गिरिराज को प्रार्थना करती है माता यशोदा, वो कहते कि हे गिरिराज, तुम ना बहुत हल्के बन के रहो, हाँ बहुत हल्का हो जाओ, ताकि मेरा ये जो पुत्र है कृष्ण इसे कोई भी कष्ट ना हो। तो मधुमंगल कहते हैं मैया आप चिंता मत करो, वास्तव में ये इंद्र ने हम सब पर उपकार किया है। क्या किया है? उपकार किया है, जिसके कारण हम कृष्ण के माधुर्य को पूर्ण रूपेण देख पा रहे हैं। इसलिए सुना वल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। तो कृष्ण में मधुरता है, उनके लीला, उनका प्रेम, उनका वेणुवादन और उनका जो सौंदर्य है। तो मधुमंगल कहते हैं कि कृष्ण तो माधुर्य की खान है और ये इंद्र ने हमारे ऊपर उपकार किया है ताकि हम सब लोग एक साथ एक समय कृष्ण को एकटक निरंतर अपनी आंखों को ब्लिंक किए बिना देख पा रहे हैं। हाँ तो वहां पूरे ब्रजवासियों का सम्मेलन ही था, आजकल होते ना सम्मेलन, डिफरेंट जात के सम्मेलन, तो वैसे ही ब्रजवासी सम्मेलन था। और सारे सम्मेलन में केवल कृष्ण को देखना है उसका उद्देश्य था। तो ऐसे ब्रजवासी सारे चर्चा करते जा रहे थे और नंद महाराज उत्साहित करते थे मधुमंगल, हाँ बहुत अच्छा है, तुम इस प्रकार से बीच बीच में बोलते रहो, हाँ तो सारे ब्रजवासी उत्साहित हो जाते थे। तो मधुमंगल ने कहा कि कृष्णा देखो तुम तो उठा के खड़े हो, बहुत अच्छा है, लेकिन कृपा करके एक काम मत करना। क्या? अपने वेणु को मत बजाना, बांसुरी को मत बजाना, क्योंकि वो बजाओगे तो इंद्र जितना बिगाड़ नहीं सकता था हमारा, उससे अधिक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जब वेणु वादन होता है तो हर चीज पिघलने लगती है, हृदय पिघलने लगते हैं, माउंटेन्स पिघलने लगते हैं। कहते तुम अपने वेणु का वादन करोगे तो ये जो गोवर्धन है ये भी पिघल जाएगा, फिर हम नहीं बचेंगे। तो उन्होंने कहा इसको मत बजाओ और आपकी जो सुमधुर ध्वनि है जब इससे निकलती है, जिससे यमुना बछड़े सब स्तब्ध हो जाते हैं, पिघलने लगते एक प्रकार से। तो एक सखी थी श्यामा सखी गोपिका, जो श्रीमती राधा रानी के साथ बैठी थी, और श्रीमती राधिका को कहती है कि हे राधिका, जब तक कृष्ण इस गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, उठा के खड़े हैं, तब तक अपने नेत्रों को चंचल मत करो, उनकी ओर मत देखना। आप यदि देखोगे थोड़ा भी आपका कटाक्ष, जैसे साइड ग्लांस कहते हैं, कटाक्ष डालोगे तो फिर कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, पूरा गोवर्धन हिलने लगेगा। तो इस प्रकार से सारे रसों का एक साथ चरणिंग हो रहा था, चरणिंग और चैंटिंग हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सखी ने कहा, गोपिका ने कहा कि आप अपने नेत्रों का कटाक्ष मत डालो चंचल करके, अन्यथा ये जो पर्वत है वो कृष्ण के हाथ से फिसल सकता है। तो बाकी दूसरी गोपिकाएं कहते कि जब कृष्ण है राधिका आपकी ओर दृष्टिपात करते तो कृष्ण के शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हाँ कृष्ण में रोमांच खड़े हो जाते हैं, हाँ पसीना छूटने लगता है। हाँ तो इस प्रकार से ये सब चर्चा कर रहे थे। और उस समय यशोदा माता ने कहा कि हे कृष्ण, बहुत लंबा समय बीत गया, तुमने कुछ खाया नहीं है, बहुत उदासीन लग रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो शरीर है वो क्षीण हो रहा है, तुम पतले हो रहे हो। माता को हमेशा पुत्र क्या दिखाई देता है? पतला ही नजर आता है, थका हुआ लगता है, हाँ चाहे जितना मर्जी हट्टा कट्टा हो। तो कृष्ण तो जब ये माता यशोदा देख रहे थे और बता रहे थे तो कहती है कि देखो तुम्हारा मुंह सूखा जा रहा है, देखो गाय भी नहीं खा रही है, तुम नहीं खा रहे हो तो, और कोई भी खा नहीं रहा है, इतने सारा दूध है, दही है, मलाई है, मक्खन आदि है, हाँ तुम क्या करो अपने सखाओं के संग में हाँ भोजन को ग्रहण करो। तो मधुमंगल कहता है कि ये माता सही कह रही है, कृष्णा प्लीज ये आप ये इस वचन का पालन करो, हाँ मैं भी तो भूखा हूँ, मुझे भी तो भूख लग रही है। तो इस प्रकार से ये सब आदान प्रदान हो रहा था, तो इंद्र आते हैं ऊपर से देखते कि ये क्या हो रहा है, हाँ ये गोवर्धन की सुंदरता और बढ़ते जा रही है, मैंने तो पूरे अपनी सेना को भेजा था, समर्थक आदि सबको भेजा था कि इसको नष्ट करो, और मैं देख रहा हूँ हिरण्य ऊपर से चल रही है, मयूर आवाजें कर रहे हैं, हर किसी चीज को रंच मात्र भी हाँ किसी चीज की हानि नहीं हो रही थी। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी महीने जोरदार वृष्टि आदि की उसका फिर भी हाँ कोई प्रभाव हाँ इस पर नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से जो इंद्र है वो अपने समझ जाता है, अपनी गलती को अनुभव करता है। तो कृष्णा फिर अपनी वेणु निकालते हैं और उसने उसको बजाना शुरू करने वाले थे, तो माता यशोदा कहती कि हे कृष्णा ये जो वेणु बजाने से पेट नहीं भरेगा, हाँ तुम्हें क्या करना होगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी हाँ तुम खाओगे तो ये सारे ब्रजवासी और ये सब लोग हाँ सब चीजें ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे कृष्णा माता यशोदा के हाथ से उन व्यंजनों को स्वीकार करते हैं, और थोड़ा सा समय बीतता है तो पूर्ववत सारे ब्रज की भूमि दिखाई देती है। फिर कृष्णा सबको कहते हैं कि हे ब्रजवासी गण, नंद महाराज यशोदा अपने सखाओं को गोपिकाओं को कहते हैं कि अभी क्या करो, आप सब लोग बाहर चलो, श्री श्री राधा गोविंद देव की। तो कृष्ण कहते हैं बल्कि 7 दिन उसके नीचे थे, उनको लग रहा था कि 7 क्षण बीते हैं, ब्रजवासियों को लग रहा था कि इतना कम समय के लिए हम कृष्ण के साथ हैं। तो कृष्ण ने देखा कि आकाश निर्मल हो गया है, सूर्योदय हो गया है, कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग अभी बाहर चलो, और फिर तत्काल सारे लोग बाहर जाते हैं और कृष्ण फिर उसको रखते हैं गोवर्धन को और बाहर आते हैं। जैसे कृष्ण बाहर आते हैं, हर जो ब्रजवासी हैं उन सबका जो वात्सल्य प्रेम है वो कृष्ण के प्रति बढ़ता है, कोई कृष्ण का आलिंगन करता है, हाँ कोई कृष्ण को बालों में हाथ लगाता है, कोई कृष्ण की स्तुति करता है, कोई कृष्ण के लिए कुछ ऑफर करता है, तो सारे ब्रजवासी हाँ कृष्ण से हाँ प्रेम करना शुरू करते हैं, उनसे आदान प्रदान शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है घटित होती है वृंदावन में, गिरिराज की महिमा को कृष्ण स्थापित करते हैं, और गिरिराज कृष्ण से अभिन्न है, और दूसरा क्या है, कृष्ण के महान भक्त हैं, हरिदास वरिया, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये गिरिराज कृष्ण प्रीति के भंडार हैं। हमारे आचार्यों ने गिरिराज को बहुत सारी स्तुतियाँ की हैं, प्रार्थनाएँ लिखी हैं और डिजायर व्यक्त की हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, हे गोवर्धन आपके निकट मुझे निवास प्रदान करो, हाँ क्योंकि आप कृष्ण प्रेम के भंडार हैं। तो ऐसे गिरिराज की लीला का स्मरण करने का आज दिन है, उनके गुणों का गान करने का, उनके बारे में चर्चा करने का और इस फेस्टिवल को मनाने का। तो इस लीला का प्रमुख प्रयोजन यही था, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कृष्ण देवताओं की जो पूजा है उसको एक प्रकार से बंद कराना चाह रहे थे, और दूसरा सारे जगत को ये दिखाना चाह रहे थे कि कितना मैं अपने भक्तों से प्रीति रखता हूँ, और एक हर एक व्यक्ति को कितना आवश्यक है मेरे जो महान भक्त हैं उनका शेल्टर ग्रहण करना, आश्रय ग्रहण करना। हाँ तो इस प्रकार से कई प्रकार की शिक्षाएँ इस लीला से प्रदान करते हैं कृष्ण, और श्रीमद् भागवतम या कृष्ण बुक में भी श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनका स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा, गिरिराज गोवर्धन के श्रील प्रभुपाद के हिदाय गौर प्रेमानंदे।